नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत। दोनों देशों के बीच आज नई दिल्ली में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश के 309 नगरीय निकाय में होने वाले चुनाव के लिए 34,719 उम्मीदवार मैदान में। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बैंकों को जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा और प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना। कल 19 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने आज नई दिल्ली में विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। इन एमओयू में नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण तथा अन्य क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट द वेवर ने द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देश अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले तिमाही में देश ने 7.8% जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है। उन्होंने भारत और बेल्जियम के संबंधों को दीर्घकालिक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक में भागीदारी में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को दोनों देशों की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को गति मिलेगी।
पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
बेल्जियम के प्रधानमंत्री श्री वेवर ने अपने वक्तव्य में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश तथा वैश्विक ताकत बताया। उन्होंने कहा कि बेल्जियम और भारत दुनिया की सबसे खुली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। नगरीय निकाय चुनावों के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन रहा। 10,245 वार्डों के लिए होने वाले इन चुनावों में कुल 8,457 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। इसके साथ ही प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन वार्डों के लिए अब 34,719 उम्मीदवार मैदान में हैं। 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए लगाया। वहीं कई सीटों पर असंतुष्ट निर्दलियों ने पर्चे वापस लेकर अधिकृत प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की। 30 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचित हुए, वहीं कई वार्डों में बागी उम्मीदवार और तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी सीधे तौर पर चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अब चुनाव प्रचार पूरी तरह रफ्तार पकड़ रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव में नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों की वीसी के जरिए बैठक ली। जयपुर में हुई इस बैठक में उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री सिंह ने मतदान दलों की रवानगी, मतगणना केन्द्रों और वोटों की गिनती की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने पर्यवेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह सजग और सतर्क रहते हुए सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निस्तारण करने को कहा। प्रदेश में होने वाले इन चुनावों के लिए 49 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि पर्यवेक्षकों को 14 सितंबर तक संबंधित जिलों में रहकर चुनाव प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी करनी होगी।
इनको जिलों में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, तो ये लोग जो है 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लगातार जिलों में रहेंगे और जो भी चुनाव प्रक्रिया है उसके ऊपर जो है ये पूरी निगरानी रखेंगे, और अगर उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है या कहीं आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उसके बारे में वो जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को भी अवगत कराएंगे और जो है राज्य निर्वाचन आयोग को भी अवगत कराएंगे, और उनके माध्यम से जो है हम पूरी जो प्रक्रिया है उसके ऊपर निगरानी रखेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए कहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके। मुख्य सचिव आज जयपुर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बैंकों को साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि इससे लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने बैंकर्स से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। देश में जीडीपी दर 7.8% रहने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की, साथ ही उन्होंने प्रदेश के प्रमुख बैंकों के प्रदर्शन की सराहना की।
ये देखा गया कि अभी हाल ही में जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ के नंबर्स आए, जो 7.8% ग्रोथ रेट दिखा है, और जीएसटी टैक्स कलेक्शंस में भी लगभग 2,00,000 करोड़ का इस महीने में टैक्स कलेक्शंस दिखे। जिस प्रकार से इकोनॉमी में जो बोयंसी दिख रहा है वही बोयंसी बैंकिंग पर परफॉर्मेंस में भी आज मुझे नजर आया है, और खास करके जो राजस्थान में जो प्रमुख बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा।
राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगों द्वारा फिशिंग लिंक के जरिए निजी और बैंकिंग जानकारी चोरी करने की आशंका के मद्देनजर लोगों को सतर्क किया है। साइबर ठग फिशिंग लिंक के माध्यम से मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को वायरस भेजकर संक्रमित कर देते हैं। इसके बाद उपकरण पर नियंत्रण हासिल कर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना नेट बैंकिंग संबंधी विवरण और संवेदनशील जानकारी चोरी की जा सकती है। साइबर अपराध के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने एंड्रॉयड मोबाइल उपयोगकर्ताओं को ई स्कैन, सीईआरटी इनबॉट रिमूवल ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये ऐप मोबाइल में मौजूद बॉट, मॉलवेयर, ट्रोजन और अन्य साइबर अपराधों की पहचान कर उन्हें हटाने में मदद करता है। उन्होंने लोगों से व्हाट्सएप पर दो स्तरीय सत्यापन सक्रिय रखने का आग्रह किया है। और अब मौसम। प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अगले 3-4 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। 4, 5 और 6 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं पे तेज और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर कोटा संभाग के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अभी भी अगले एक सप्ताह के दौरान और मानसून परिस्थितियां रहेंगी। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में भी अगले 3-4 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल मनाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्म के संदेश को आत्मसात करते हुए कर्तव्य पथ पर चलने का आह्वान किया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पर्व पर बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव को सुदृढ़ करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। इस बीच कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस अवसर पर घर घर में लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर उल्लास देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे। राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं और तड़के ही दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ब्रज क्षेत्र भरतपुर के बाजारों में भी खासी रौनक छाई हुई है। श्रद्धालु सुंदर पोशाकों के साथ श्रृंगार और पूजन भोग सामग्री की तैयारी कर रहे हैं। उधर डीग के कामवन में भी नंदोत्सव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि कल से कामा उत्सव की भी शुरुआत होगी।
इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु कामवन के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी विशेष झांकियां, मंगला आरती और मध्यरात्रि जन्मोत्सव की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कृष्ण मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साफ सफाई और सुगम यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर यातायात को डाइवर्ट किया जा रहा है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
लोक देवता गोगाजी की जन्मस्थली चूरू जिले के ददरेवा में लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। कल रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मेले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों से दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। उधर हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में भी मेलार्थियों की आवक बनी हुई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में आतिशबाजी बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ब्रजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए यह अस्थायी लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके लिए 22 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। ये लाइसेंस 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत। दोनों देशों के बीच आज नई दिल्ली में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए 34,719 उम्मीदवार मैदान में। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बैंकों को जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा और प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना। कल 19 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।